तफसीर, आप देखिए कि आज का हमारा सबक जो है ये आयत नंबर 23 से लेकर 46 तक है, लेकिन 23 से लेकर और 55 तक एक मजमून है, और मजमून किसका है? मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की सरगजिश जो है वो अल्लाह ताला पेश कर रहे हैं। और क्यों पेश कर रहे हैं? इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बनाकर भेजे गए तो अहले मक्का ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो अल्लाह ताला तारीख में से एक ऐसी कौम की मिसाल देते हैं जो कौम कुव्वत, शौकत, तामीर, तमद्दुन इसके एतबार से बड़ी बरतर और आला कौम थी। और आपके पास भी, यानी इस कौम के पास अल्लाह ताला ने बड़े जलील कदर पैगंबर को भेजा था, और वो कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। और कौम कौन सी थी? फिरौन की कौम और फिर बनी इसराइल के लोग। तो लोगों ने किया क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का मकसद भी क्या था कि फिरौन की गुलामी से आजादी दिलाई जाए और उसके साथ जो है एक अल्लाह की इबादत पर लोगों को जो है वो जमा किया जाए। और आप पढ़ेंगी कि इस मिसाल को, इस कहानी को पेश करने का मकसद क्या है कि कौम के लोग भी सरदार थे, मक्का के जो थे कुरैश के कौम के लोग सरदार, बड़े अमीर। तो अल्लाह ताला ये बात बताना चाहते हैं कि अहले मक्का में भी, जैसे अबू जहल है, उतबा है, उमैया बिन खल्फ है, बड़े बड़े सरदार गुजरे, लेकिन ये जो सरदार थे और ये जो थे फिरौन, हामान, कारून, इनकी क्या बात है? तो इनकी बागीचियां देखें, उनकी सरदारियां देखें। तो गोया के यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है एक तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तसल्ली दे रहे हैं कि कुरैश के जो फिरौन हैं और हामान और कारून हैं उनका भी वही हाल होगा जो के पिछलों का हुआ। तो क्या फरमाया? आगाज ही बड़ा जबरदस्त है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कहते हैं कि वलकद अरसलना, और बेशक हमने भेजा, जैसे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भेजा, इसी तरह हमने भेजा था किसे? मूसा, मूसा अलैहि सलाम को। कैसे भेजा? बी आयातीना, सात अपनी निशानियों के। तो अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहि सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा तो ऐसे थोड़ी भेजा था, निशानियों के साथ भेजा था। और वे निशानियां कौन सी थी? तिस आयात, नौ निशानियां, इनका जिक्र आप पढ़ चुकी हैं। और उन नौ निशानियों में दो बड़े वाजे मोजजात थे जो शुरू में उनको दिए गए थे, एक थी असा और दूसरा था यदे बैजा। और कौम थी कुप्ती कौम जिनका बादशाह था फिरौन, और बड़ा जालिम और जब्बार ये बादशाह था और रब्बे आला होने का इसने दावा किया था। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों के साथ भेजा, बी आयाती ना, अपनी निशानियां, कोई मामूली निशानियां थोड़ी थी, अल्लाह की निशानियां। और जो है क्या फरमाया? वह सुल्तानी मुबीन, और दलीले रोशन के साथ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो ऐसे थोड़ी भेज दिया उठाकर, बल्कि क्या है कि दलीले रोशन, और दलीले रोशन का क्या मतलब है? जिससे खुली निशानियां, और जिससे मुराद बाज दुकात बाज लोग जो हैं वो क्या लेते हैं कि जदे बैजा और फिर असा, के मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहली दफा वो दरबार में गए तो ये दो निशानियां उनके पास थे। तो अब जो है, अब आप जरा तसव्वुर करें और जरा आप सोचे तो सही कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियों के साथ भेजा है, और भेजा कहाँ पे है खुली निशानियां देकर? इला फिरौना व हामाना व कारूना। अब तीन लोगों का जिक्र किया है, अहले मक्का को समझाया जा रहा है, और सारी दुनिया के फिरौन जो है, हर दौर का एक फिरौन होता है ना, तो उनको समझाया जा रहा है, और उसके साथी होते हैं फिर हामान और कारून जैसे लोग, कि तरफ भेजा था फिरौन के, जो अकफरुल काफिरीन था, कुप्ती कौमों में से था। और वैसे भी सूरज का जो है वो अवतार और पुजारी थे वो लोग, उसके तो कहते थे कि ये सूरज का अवतार है, और वहामाना और हामान। तो हामान जो है ये कौन है? इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि हामान फिरौन का वजीरे कंस्ट्रक्टर था, जैसे वजीरे तामीरात। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक अल्लाह की दावत दी, तौहीद की दावत, तो फिरौन ने हामान से कहा था कि हामान जरा ईंटें तो पकवा कर एक ऊंची इमारत बनाओ, अभी आज आप आज के सबक में इसको पढ़ेंगे, ताकि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को जो है वो देख सकूं। तो दूसरा जिसकी तरफ जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, ये कौन है? हामान है। तो गोया के हामान भी फिरौन के हाँ इसका बड़ा एक दर्जा था और इसका एक बड़ा जो है वो मकाम था, हामान का कोई मामूली नहीं था, है ना? तो ये भी क्या था? एक बहुत बड़ा लीडर था। और तीसरा जिक्र मिलता है कारून का। तीसरा कौन था? वाकारूना। और कारून के बारे में क्या आता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का कजन था, चचेरा भाई, और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बाद ये तुरात का सबसे बड़ा आलिम था, बेअंदाजा माल और दौलत का ये मालिक था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इससे ज़कात और इन्फाक का मुतालबा किया तो उसने इनकार किया और कहने लगा कि इसमें अल्लाह के फजल की क्या बात है, ये दौलत तो मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर हासिल की है। और फिर मुखालफत इतनी बड़ी कि मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर फिरौनियों के साथ मिल गया। और ऐसा होता है ना कि वक्त की कुर्सी और वक्त की दौलत का नशा ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात अपने भी बेगाने हो जाते हैं, इल्म रखने वाले भी जाकर जो है वो वक्त के सूरज की पूजा करने लगते हैं, साथ मिल जाते हैं। तो इसी तरह ये भी मिल गया, अल्लाह ताला ने इसको और इसके इसको सब खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। और इस तरह जो है कारून को भी बड़ी इबरतनाक जो है वो सजा मिली। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियां देकर भेजा फिरौन की तरफ, हामान की तरफ, और उसके बाद जो है वो कारून की तरफ, इन तीनों की तरफ भेजा। और अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बय्यनात लेकर गए हैं, और बय्यनात जो है बय्यनत उनकी जमा है, ऐसी दलील को कहते हैं जिसके सामने फरीके सानी लाजवाब हो जाए। और फिर बय्यनात से क्या मुराद है? वो तमाम मौजे जो अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को दिए, कुरान की आयात भी, और वो सारे अकली दलायल जो पैगम्बर पेश करता है। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर इनको दावत दी है, और दावत को सुनकर ये क्या कहते हैं? फकालू, पस वो बोले, साहिरुन कज़्ज़ाब, जादूगर झूठा। अब आप देखिए कि फकालू ये कहने वाले कौन थे? फकालू, हाँ, तो क्या है कि तीनों के तीनों, अब तीनों ने ये कहा कि साहिरुन कज़्ज़ाब, और बाज ये कहते हैं कि फिरौन ने ये कहा। तो फिरौन ने ये कॉल, ये गोया कि ये फिरौन था जिसने कहा, ये मौजे का इनकार किया। तो बाज कहते हैं कि नहीं, फिरौन ने नहीं, बल्कि हामान भी और कारून भी इसके साथ मिल गए थे, वो भी इसके साथ ही थे। तीनों ने कहा साहिरुन, और साहिर कौन होता है? जादूगर को कहते हैं। और जादू जो है क्या होता है कि जादू जो है हकीकत उससे बदलती नहीं है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि तखयल बंदी कर दी जाती है, और महसूस ऐसा होता है कि हकीकत बदल गई है ना? तो अब जो है, चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की बातें दिल पर असर करती थी, तो इल्जाम क्या दिया? साहिरुन। और अहले मक्का ने रसूल अल्लाह को क्या इल्जाम दिया? साहिर का इल्जाम दिया। दूसरा इल्जाम इनका क्या था? कज्जाब, झूठा। और यही इल्जाम जो है अहले मक्का ने दिया। अल्लाह ताला कहते हैं फलम्मा जा हूं, पस जब पहुंचा इनके पास बिलहक की हक लेकर, मिन इंदिना हमारे पास से। तो अब आप देख लीजिए कि अब जो है इनका साहिर कहना और इनका जो है वो जादूगर कहना, और दूसरी तरफ क्या है कि इनके पास हमारी तरफ से हक लेकर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे। तो गोया के हक कहीं ऐसे ही नहीं था, बल्कि क्या था? अल्लाह इस कायनात का सबसे बड़ा हक है, कायनात की सबसे बड़ी सच्ची हकीकत अल्लाह की जात है। तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो हक दिया था तो वो उस हक को लेकर इनके पास गए। पालू तो उन्होंने कहा उक्तलू, कत्ल कर दो इसको। अब क्या है कि कत्ल कर दो, एक तोलू आया है, क्या है कि कत्ल कर दो। अब किसको कत्ल करना है, यहां पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि इन सबको कत्ल कर दो, और वो कौन है, अबना बेटे, है ना। तो बेटों के लिए इब्न एक होता है, अबना ज्यादा है, तो बेटों को कत्ल कर दो। अल्लादीना उन लोगों के जो आमनु ईमान लाए हैं, माहू इसके साथ कि मूसा अलैहिस्सलाम पर जो भी ईमान लाए हैं इनके बेटों को कत्ल कर दिया जाए। वस्तायु और जिंदा रहने दो। अब आप देख लें कि उसकी दूसरी तदबीर क्या थी, ये भी अमर का सीगा है, उक्तलू भी अमर का सीगा है, वस्तायु भी, और वस्तायु जो है से है ना। हई क्या होता है, क्या रूट है इसका, हा या, तो जिंदगी से है, और यहाँ पे अलिफ सीन ता, जिंदगी मांगना है ना, तो इस ता यू ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है कि तुम जीती रहने दो, तुम जिंदा रहने दो, तुम जिंदा छोड़ दो, निसा अहुम इनकी औरतें, इनकी बेटियां। तो लड़कों को कत्ल करना है और इनकी जो लड़कियां हैं जो कल औरत बन जाएंगी उनको जिंदा रहने देना है। तो ये थी फिरौन की तदबीर, है ना। और ये उसके साथ कौन और मिले हुए थे, हामान भी साथ था और उसके साथ कारून भी साथ था, तो तीनों की तरफ निस्बत है, तीनों की तरफ आप जो थे वो रसूल बनाकर भेजे गए थे। वमा कैदुल काफिरीना, और नहीं थी तदबीर काफिरों की, इल्ला फी दलाल, मगर में गुमराही। अब यहां पर जो है क्या बात बताई जा रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो गए थे उनको समझाने के लिए, और उल्टा हुआ क्या कि फिरौन ने और उसके साथियों ने बड़ी शदोमत से मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, और इनकार कैसे किया कि कहा कि इनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको कैसे कत्ल करने के लिए फिरौन ने कहा। तो याद रखिए कि फिरौन का लफ्ज जो है वो अहले मिस्र के जो बादशाह थे उनका एक लकब था, जो भी बादशाह बनता था उसका टाइटल उसको फिरौन का मिल जाता था, जैसे कैसर है ना, ये भी एक लकब है, जैसे जो है वो अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का एक टाइटल है, जो भी अमीर बनता है तो अमीरुल मोमिनीन। अब ये कि ख्वाब किसी और फिरौन ने देखा था, है ना, उसने देखा था, और उसने तो मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही जो है वो ये आफत शुरू कर दी थी, ये तदबीर चलनी शुरू कर दी थी कि जो भी बेटे पैदा हों उनको कत्ल कर दिया जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम बच चुके हैं उस कत्ल से, अब वो बड़े हो चुके हैं, अब वो मदियन से वापस आए हैं, अब वो वादिय एमन से गुजर कर आए हैं, रसूल बनाए जा चुके हैं, उनको मोजात मिल चुके हैं, फिरौन के दरबार में जा चुके हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो अब ये कोई और जो है वो फिरौन है, लेकिन सिलसिला वही चल रहा है। तो बहरहाल उसने ये तदबीर इख्तियार की, और तदबीर क्या थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही कर दिया जाए। और साथ ही अल्लाह ताला उस पर तबसरा करते हैं कि बनी इसराइल के जकूर को कत्ल करने की ये तदबीर जो थी वो इसलिए इख्तियार की गई थी कि बनी इस जकूर का क्या मतलब है, लड़के, मुझे इजाजत है ना इस तरह के लफ्ज बोलने की, इसलिए कि अब माशाल्लाह आपको पता ही है मुजक्कर से जकूर है, उनको कत्ल करने की तदबीर ये इसलिए उसने इख्तियार की थी ताकि बनी इसराइल जो है उनको कंट्रोल किया जाए, और अगर किसी कौम के जो लड़के या मर्द है उनको कत्ल कर दिया जाए तो कौम की तादाद नहीं ज्यादा बढ़ती, है ना। आप देख लें आज भी हर दौर में औरतों की तादाद ज्यादा रही है और मर्दों की तादाद जो है वो कम रही है। तो तदबीर इसलिए अख्तियार की गई कि बनी इसराइल की तादाद को कंट्रोल किया जाए ताकि वो ज्यादा होकर कुप्तियों के इकतदार के लिए खतरा ना बन जाए, है ना। तो इस तरह बनी इसराइल की तरक्की जो है ना उसको वो आगे नहीं आना देने आगे नहीं देना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, वमा कैदुल काफिरीना, और नहीं थी तदबीर काफिरों की, काफिर की जमा है काफिरीन, इल्ला फी दलाल, मगर गुमराही। तो अब क्या है कि सारे लड़कों को इसलिए कत्ल किया कि मूसा से मुझे मेरी हुकूमत जो है उसका खतरा है, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जिससे खतरा था वही हकीकत बनकर जो है वो सामने आ गई। तो हुआ क्या कि जिस मूसा से फिरौन की सल्तनत की खैर नहीं थी, और वही फिरौन जो है वो तबाह बर्बाद हुआ, और वही मूसा जो है उसकी सल्तनत को ढाने का जरिया बना। तो ये है जो बात जो बताई जा रही है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि काफरों की तदबीर बेअसर रही और मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो गालिब आए। कैसे गालिब आए? कि बनी इसराइल के जब लड़कों को कत्ल करने का जो हुक्म दिया गया था, तो अल्लाह ताला ने तो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को क्या कहा था? दो हुक्म दिए थे, संदूक में इसको डालना और समंदर की लहरों के सुपुर्द कर देना, फलकी फिल यम, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो क्या हुक्म दिया था? गम ना करना और सब्र करना, है ना, परेशान ना होना, हम इसको दोबारा तुम्हारे से मिला देंगे। तो ये थी अल्लाह की तदबीर कि हम इसको जो है क्या करेंगे कि फिरौन के दरबार में पलवाएंगे और तुम्हारे पास तुम्हें दिलवा देंगे, तुम्हें तुमने एज ए माँ तो पालना ही था, लेकिन अब पालने की तुम्हें उजरत भी मिलेगी, तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी। तो ये थी मूसा अलैहि सलाम की पैदाइश पर और उनकी नबूवत से पहले ही ये बात जो अल्लाह ताला ने इनकी वालदा से कही थी, और आप पीछे पहले पढ़ चुकी हैं सूरत कसस वगैरह में मुख्तलिफ सूरतों में। तो अब यहाँ पर भी ये है कि काफिरों की जो तदबीर है वो जाया हो जाती है जब अल्लाह जिसको बचाना चाहता है उसको कोई चख नहीं सकता। तो अब क्या हुआ कि पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी बनी इसराइल के बहुत से लड़कों को कत्ल कर दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, और जो कत्ल गिलमान का कानून था वो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उसकी जद में ना आए। अब फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनके कत्ल के बारे में गुफ्तगू हो रही है। पहले कब गुफ्तगू हुई थी? उनकी पैदाइश से भी पहले। अब ये पैगंबर बन चुके हैं तो अब फिर कत्ल की गुफ्तगू हो रही है। वकाल फिरौन, और कहा फिरौन ने, जरूनी मुझे छोड़ दो, जरूनी मुझे छोड़ो, किस लिए? अक्तुल मूसा, मैं कत्ल कर दूंगा मूसा को, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म करना चाहता हूं। वल यदउ रब्बहु, और उसे चाहिए कि वो बुलाए अपने रब को। तो अब जो है आप देख लीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आकर जब फिरौन के दरबार में दावत देते हैं, और उस वक्त फिरौन इतना हवास बाख्ता हो जाता है, इतना मबहूत और परेशान हो जाता है, तो क्या कहता है फिरौन? फिरौन ये कहता है कि ऐ दरबारियों, मुझे इजाजत दो कि मैं इसको कत्ल कर दूं, जरूरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिरौन तो खुद अकफरुल काफिरीन और बादशाह था, उसको दरबारियों से इजाजत लेने की क्या जरूरत पेश आई? जरूरी, छोड़ो मुझे, किसी ने पकड़ा हुआ तो था नहीं, वो तो जो चाहे करता था, तो ऐसा इसने क्यों कहा? असल में मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी और वो रोशन निशानियां उनके पास थी, तो फिरौन जो था बुखरा गया, समझ गया कि ये अकेला नहीं है, इसकी पुश्त पर ताकत है किसी की, है ना। और मूसा अलैहिस्सलाम ने तो जाकर कहा भी था कि मुझे रसूल बनाकर भेजा गया है, और बड़े एतमाद से दावत को पेश किया था, है ना, बड़े एतमाद से दावत को पेश किया था। इसलिए फिरौन जो था वो बुखला गया, और वैसे भी असा और यद बैजा के जो मोजे थे वो अहले दरबार ने भी देखे, अब अहले दरबार भी मरूब हो चुके थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई के कायल हो चुके थे। और आप याद रखें कि जब भी सच्चाई उठती है, हक जो है वो उठता है, खड़ा हो जाता है, तो वो नंगी तलवार बन जाता है, ललकारता है। और अगर दुनिया उसको कबूल ना भी करे, कुछ लोग जरूर होते हैं जो कबूल कर लेते हैं, क्योंकि मुंह से इनकार भी करे दिल जो है ना कायल हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि अब फिरौन बुखलाया हुआ है, और क्योंकि खुदा कौम उसको समझती थी, अब मूसा अलैहिस्सलाम की दावत बराह रास्त उसकी जद में थी, यानी वो खुद उस जद में था, और कहता है कि अक्तुल मूसा वल यदउ रब्बहु, मैं कत्ल कर दूंगा मूसा को, और उसे चाहिए कि बुलाए अपने रब को। तो फिर इसके साथ ही क्या कहता है कि अपने रब को ये मदद के लिए पुकारे, तो ये क्या करता है? मजाक करता है, मजाक करता है अल्लाह का और मूसा अलैहिस्सलाम का। इन्नी अखाफू, बेशक मैं डरता हूं। कौन डर रहा है यहाँ पे? फिरौन कहता है मुझे डर लगता है, अय्युबद्दिला, कि वो बदल दे दीनकुम, तुम्हारे दीन को। अपने साथियों से कहता है कि ऐ मेरे दरबारियों, मुझे ये डर लगता है कि तुम कहीं दीन ही ना छोड़ दो। और दीन क्या था? सूरज की पूजा करना, है ना। सूरज इनका सबसे बड़ा देवता था और बादशाह को वो सूरज का अवतार समझते थे, सूरज देवता का मजहर समझा जाता था। तो अगर कुप्ती जो थे मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लेते तो फिर क्या होता कि मूसा अलैहिस्सलाम कायद बन जाते और फिर कौम उनके अंडर आ जाती, तो इससे मुल्क में बगावत पैदा हो जाती। तो इसलिए उसने कहा कि वो बदल दे तुम्हारे दीन को, युज़हिरा, या वो फैला दे फिल अर्दी में जमीन, अल फसाद, फसाद, कहीं ऐसा ना हो कि वो जमीन में फसाद पैदा कर दे। अच्छा, यहां पर एक और हकीकत पता चलती है, और ये एक ऐसी हकीकत है कि कुरान में अल्लाह ताला इसको बार बार जो है वो बयान करते हैं। और वो क्या है कि वो लोग जो बुरे होते हैं, जो फसादी होते हैं, वो अपने आप को मुसलिहून कहते हैं, है ना। अब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहा है कि मुझे ये डर है कि कहीं ये जमीन में जो है ना फसाद ना पैदा कर दे, है ना। और आप जो हैं पहले भी सूरत अल बकरा में ये बात पढ़ चुकी हैं कि फासिक जो हैं वो क्या करते हैं, फासिक क्या करते हैं, अल्लज़ीन यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादे मीसाकिही वयक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला वयुफ्सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। और ये वो लोग हैं कि जब इनको समझाया जाता है कि तुम ये क्या कर रहे, तो कहते हैं नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं, होती आई है कि फसादी जो है वो अपने आप को इस्लाह करने वाले बनाकर पेश करते हैं। हर दौर में हुआ है, आज के दौर में भी है ना, आज के दौर में भी, कि लोग जो हैं बुराई का नाम जो है वो नेकी रख देते हैं, अच्छाई रख देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये लोग जो हैं उलझ रहे हैं, और उसके साथ ही ये कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन ये कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं मुल्क में कोई बड़ा फसाद ना पैदा कर दें। और बड़े फसाद से मुराद क्या है कि असल में तौहीद की दावत जो है ना, ये शिर्क के पुजारियों को और शिर्क के जो लीडर होते हैं ना उनको बड़ी गिरा गुजरती है। तो अगर तौहीद इख्तियार कर ली इन्होंने, जैसा कि मक्की दौर में जब मुसलमानों ने तौहीद इख्तियार की तो मक्का के घर घर में लड़ाई पैदा हो गई, है ना, किसी का मर्द मुसलमान हुआ, किसी की औरत, तो घरों में लड़ाई झगड़ा होने लगा, क्योंकि तौहीद तो एक अल्लाह की इबादत करना है ना। तो अहले तौहीद को फिरौन ने फसादी कहा, अहले मक्का भी ये कहते थे कि नए दीन से हमारे बाउजदाद को बुरा भला कहा जा रहा है और घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। फसादी वो खुद था, गैर अल्लाह की इबादत ही फसाद की जड़ है, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम को फसादी कहता है कि इस तरह मुल्क में बड़ा फसाद जो है वो पैदा हो जाएगा। फकाला मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी उस्तु बे रब्बी, कि मैं पनाह मांगता हूं अपने रब की, और रब्बेकुम, और तुम्हारे रब की। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो कहा कि मैं अपने रब की पनाह मांगता हूँ, ये तो समझ में आता है, ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे रब की भी पनाह मांगता हूँ? इसलिए कि वो अल्लाह को रब तो मानते ही थे सारे, जैसे कहले मक्का भी मानते थे कि मुश्किलात में मुश्किलात से निकालने वाला भी रब है, बारिश नाजिल करने वाला भी रब है, तो असल में रब तो अल्लाह ही है ना। तो इसलिए जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी जो गैरत थी उसको जोश दिलाना चाहा, उसको दलील से कायल करना चाहा कि मैं जो हूं ईमान लाता हूं अपने रब पर और तुम्हारे रब पर। मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन, हर मुतकब्बिर से, मुतकब्बिर, मुतकब्बिर जो है ये क्या है, ये इस्म फाइल है, और इसके मानी क्या है, मुतकब्बिर के मानी क्या है, बेजा गुरूर करने वाला, है ना, हक का इनकार करने वाला और लोगों के हकूक जो है उनको झुटलाने वाला, उसका उसको छोड़ने वाला। अपनी जात में बड़ा बनकर रहने वाला, तो हर मुतकब्बिर से मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूँ। और मुतकब्बिर जो है वो कौन होता है? ला युमिनु बियौमिल हिसाब, जो रोजे हिसाब पर ईमान नहीं रखता। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये बात आई कि फिरौन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा रखता है, तो अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। दुआ क्या थी? इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिर ला युमिनु बियौमिल हिसाब। इसके मानी क्या है? इसके मानी असल में ये है कि जब भी कोई कौम जो है वो क्या करती है कि बातिल को इख्तियार करती है, कोई कौम हो या फर्द, तो वो मुतकब्बिर होती है। और मुतकब्बिर अपने आप को सबसे बड़ा समझता है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये फिरौन तो मुतकब्बिर है और ये मुझे कत्ल करना चाहता है, तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि उन्होंने जो है वो रब की पनाह मांगी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दुआ पढ़ी, जब दुश्मन का खौफ हो तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। आज भी हम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊजु बिका मिन शुरूरिहिम। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि अल्लाह हम तुझको इनके मुकाबले में करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह में आते हैं। तो ये वो दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। और इसी तरह जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो दुआ मांगते हैं। अच्छा, ये क्यों कहा कि मुतकब्बिर वो है जो आखरत का के हिसाब का यकीन नहीं रखता? तकब्बुर दर हकीकत हक से एराज का नाम है। अब जब हक का आप इनकार करते हैं, इंसान के अंदर अनानियत और खुद परस्ती पैदा होती है, यही तकब्बुर है। और हक का इनकार इंसान क्यों करता है? जब आखरत पर यकीन नहीं रखता, आखरत पर ईमान न लाना इंसान को मुतलकुल इनान बना देता है। सुपर ताकत, असल में सुपर ताकत कौन है? अल्लाह ताला। तो यहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या करते हैं कि मुतकब्बिर और जालिम से जो आखरत के मुनकिर हैं वो अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे अमल का क्या उसूल पता चलता है कि जब डर हो, जब खतरा हो, जब परेशानी हो, तो अल्लाह की पनाह में आना चाहिए, अपना आप अल्लाह के सपोर्ट कर देना चाहिए। और जब इंसान अल्लाह की पनाह में चला जाए तो कोई नहीं है जो उसको नुकसान पहुंचा सके। तो ये है असल बात। और ये जो सूरत है, सूरत गाफिर, सूरत मोमिन, इसका मरकजी निचोड़ क्या है? दावा, दावत इल्लाह। और दूसरी बात क्या है? तफवीज इल्लाह। तफवीज का मतलब क्या है? अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अब आप देख लें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी और ईमान लाने वाले भी अपना आप जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। दावा का काम करना है और अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। और यही काम मेरा और आपका है कि नेकी जो है हक का साथ देना है और इत्माद से नेकी को करना है, डर कर नहीं, छुप कर नहीं, परेशान होकर नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार से क्या बातें पता चलती है, ये भी नोट करते जाएं कि बड़े इत्माद से फिरौन के दरबार में ललकार कर जाकर दावत दी है और जो है वो आगे से डरते नहीं हैं कि तू मुझे कत्ल की धमकी देता है, बल्कि क्या कहते हैं कि मैं तो अल्लाह की पनाह में जा रहा हूं, तू मेरा क्या कर सकता है, कर ले जो करना है। क्या बात पता चली कि अल्लाह से उनका ताल्लुक बड़ा मजबूत था। तो हमें भी अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करना चाहिए।